जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे साधु संत। तो हम लोग सुबह देख रहे थे कि अर्जुन भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आत्मा क्या है, शाश्वत अलग व्यक्ति है, भीष्म द्रोण वगैरह वो भी अलग व्यक्ति है, और वो शरीर को बदलते हैं, अभी वृद्ध अवस्था में है, वो वृद्ध शरीर को छोड़कर इस युद्ध में मरने के बाद वृद्ध शरीर को छोड़कर एक नया शरीर स्वीकार करेंगे, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। जो धीर व्यक्ति होता है वो शोक नहीं करते हैं। तो अभी 14वें श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्दान होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहां पर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। तो अभी अर्जुन शो कर रहे हैं, दुखी है, तो उनको कह रहे इस श्लोक में कि कैसे सुख और दुख आते हैं, उनका क्या स्वभाव है। तो ये भगवद गीता ऐसे दर्शन शास्त्र है, सब कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण से वर्णन करता है। तो यहाँ पर भी भगवान कैसे ये सुख दुख आते हैं इसके बारे में वर्णन, क्या ये सुख दुख, वो कह रहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा मतलब इंद्रिय विषय, पांच इंद्रिय विषय होते हैं, शब्द रूप स्पर्श गंध रस। तो ये पांच क्या है, मात्राएं हैं, थन मात्राएं हैं कहते हैं उसको। सो जब इंद्रियां इनके संसर्ग में आते हैं तो क्या होता है, तो एक प्रकार का उस संपर्क के साथ कारण कुछ अनुभव महसूस होता है, उस अनुभव का ही जब वो सुख को प्रदान करता है, वो अनुभव को इंद्र तृप्ति कहते हैं उसको। और कभी वो सुख का अनुभव होता है या कभी दुख का अनुभव होता है उसके कारण। तो इंद्र तृप्ति का क्या परिभाषा है, जब इंद्रियां हमारे नेत्र है जो सुंदर रूप को देखना चाहते हैं, कान है कुछ ऐसा मधुर आवाज को सुनना चाहता है, त्वचा है कुछ मुलायम चीजों को छूना चाहता है, जीभा है अलग अलग रसों को आस्वादन करना चाहता है, व्यंजनों को रस भरित व्यंजनों को आस्वादन करना चाहता है, और नासिका है वो कुछ सुगंध सूंघना चाहता है। तो जब इसको पूर्ति करते हैं उसको इंद्र तृप्ति कहते हैं, या इंद्रिय भोग या इंद्र तृप्ति कहते हैं उसको, इंद्रियों को तृप्त करना। और योग पद्धति में एक क्या है, एक 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 स्टेप है अष्टांग योग में। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अन्न नहीं देना, आहार नहीं देना, इंद्रियों को उनके विषय का विषयों को नहीं देना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो इंद्रिय विषयों से हमारे इंद्रियों को दूर लेके जाना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो जब भी ये इंद्रियां इन विषयों के संपर्क में आते हैं तो कुछ सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तो वही सुख और दुख है, या कुछ द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं उसके कारण, तो वो सुख दुख शीत उष्ण के रूप में ये सब ड्युअलिटीज द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही पानी है, लेकिन वो सर्दी के मौसम में वो दुख को प्रदान करता है, वही पानी गर्मी के मौसम में आनंद को प्रदान करता है। तो वो सिर्फ परसेप्शन, हमारा कैसे अनुभव होता है उसके अनुसार, उस अनुभव के अनुसार उसको हम लोग सुख मानते हैं या दुख मानते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान ये द्वंद्व जो है, शीत उष्ण सुख दुख अगम पाई नो नित्यास, वो आते जाते रहेंगे। अगम मतलब आना, अपाई न मतलब जाना। तो अनित्यास, अनित्य मतलब क्षणिक है, तो इसलिए आपको सहन करने के लिए सीखना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है, क्यों ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को, क्या संबंध है उनके विषय में? ओके, वो ठीक है, वो भगवद गीता के अनुसार, लेकिन आप दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से, फिलोसॉफिकल इन कॉन्टेक्स्ट विद द फिलोसॉफी, अभी आत्मा के बारे में, आत्मविद्या का चर्चा हो रहा है, आत्मा के बारे में, आत्मा से क्या संबंध है ये सभी शीत उष्ण सुख दुख का क्या संबंध है? तो ये इंद्रियों को परसेप्शन है, इंद्रियों के कारण इंद्रिया अनुभव करती है, तो क्यों आत्मा को क्यों सुख दुख पहुंचता है, ऐसे प्रश्न उठ सकता है ना, वो दूसरे शब्दों में वर्णन करना ही चाहते हैं। तो व्हाट इज द कनेक्शन विद द फिलॉसफी विच इज फ्लोइंग हियर, दैट क्वेश्चन में अराइज, द सेम क्वेश्चन कैन बी पुट इन अदर वर्ड्स। तो दूसरे शब्दों में वही, उसी को यहाँ पर आत्मविद्या के बारे में चर्चा हो रहा है, आत्मा से ये सुख दुख का क्या संबंध है, या दूसरे शब्दों में ये इंद्रियों का संसर्ग के कारण ये सुख दुख का उत्पन्न होता है, इंद्रियों वस्तुओं के कारण, तो आत्मा से इनको क्या लेना देना है, क्यों आत्मा सुख दुख को अनुभव करता है, ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं ना। क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग ये शरीर को शरीर से पहचानते हैं, अपने आप को इस शरीर के साथ जो पहचान है, शरीर इंद्रियों से बना है, इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, सुख दुख का उत्पन्न अनुभव करते हैं। इसके कारण क्योंकि हमारे इंद्रियों से या इंद्रियों से बना हुआ शरीर से पहचान है, इसीलिए आत्मा क्या करता है, मुझे दुख लग रहा है, मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसे महसूस करता है, लेकिन अंत में इससे कुछ लेना देना नहीं है। तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि को विदुर ने पूछा, हालांकि परमात्मा आत्मा के साथ स्वयं विद्यमान करते हैं, आत्मा उनको बहुत ही प्रिय है, फिर भी इस जगत में कितना सुख और दुख का क्यों अनुभव करता है? तो तब उसके उत्तर में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यह क्या है, यह सभी सुख दुख क्या है, आत्म विपर्य यह। सो आत्मा का गलत पहचान के कारण, अपने अस्तित्व के गलत पहचान के कारण आत्मा ऐसे अनुभूति करता है। वो अलग 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 उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग पानी में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं तो कैसे लगता है, चंद्रमा हिल रहे लगता है, वास्तव में चंद्रमा नहीं हिल रहा है, पानी हिल रहा है। वो जो मीडियम माध्यम जो है, प्रतिबिंब का जो माध्यम है वो हिल रहा है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि असली जो जो वस्तु है, जो चंद्रमा है, वो हिल रहा है लगता है। वैसे ही वास्तव में सुख दुख का अनुभव किसको हो रहा है, शरीर और मन को हो रहा है, स्थूल और शरीर, स्थूल शरीर और मन को हो रहा है, क्योंकि स्थूल शरीर और मन क्या है, ये इंद्रियों से बना है। इंद्रियों से बना है. डोंट प्ले. सो यू आर वेटिंग. सॉरी. सो इंद्रियों से बना है. तो इंद्रियों से बना है इसके कारण हम लोगों को ऐसे लगता है कि आत्मा क्या कर रहा है, ये अनुभव कर रहा है, लगता है. वैसे फंडामेंटल क्या चीज क्या है, शरीर तो मृत है, अंत में वो क्या है, आत्मा इसके आधार है, शरीर का आधार है, वही चेतन युक्त है, शरीर तो जड़ है. लेकिन फिर भी गलत पहचान के कारण ये सब हमें अनुभूति होती है. वास्तव में इसके इसको कुछ लेना देना. असंगो यम पुरुषः, पुरुष वो आत्मा क्या है, इससे कुछ लेना देना है उससे. वो अलग है इस इन सभी चीजों से, शरीर से अलग है, आत्मा से, इंद्रियों से अलग है. ये इंद्रियों के कारण जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं भौतिक जगत में, या द्वंद्व का अनुभव होता है, उससे अलग है, उससे कुछ लेना देना नहीं है. तो ये भगवान बता रहा है. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीतोष्ण, वो सुख दुखदाय, ये अर्थ है उसका. उससे कुछ लेना देना नहीं है. क्यों? वो अनित्य है, शाश्वत नहीं है. आप शाश्वत आत्मा हो, उससे क्यों दुखी होना चाहिए. ऐसे कह रहे, इसलिए आपको सहन करो, ऐसे बताया जाता है. और यहाँ पर भक्ति में क्या है, कैसे हम लोग सहन करते हैं. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सुख दुख आएंगे. नहीं, एक और मैं वो अन्य और भी उदाहरण प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं. वो जैसे ताजमहल के ऊपर जो चंद्रमा के दिन होता है ना, चंद्रमा बहुत सुंदर दिखती है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, वर्णन करते हैं. ताजमहल एक बहुत सुंदर क्या है, इमारत है, और चंद्रमा का जो किरण उसके ऊपर गिरते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं. तो या उसके चंद्रमा का किरण भी बहुत सुंदर है और ताजमहल बहुत ही सुंदर दिख रहा है चंद्रमा, ऐसे लोग वर्णन करते हैं. ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया. तो ये सब क्या है, अलग अलग पहचान के कारण. तो हमारा भी ये शरीर के साथ पहचान के कारण ये दुख का अनुभव. प्रभुपाद एक और उदाहरण, टीचर बोलते हैं वो बच्चे को, तुम फिर से ऐसे गलती करते हो तो मैं क्या करूंगा, आपका सर काट के ऐसे क्या करूंगा, लटका दूंगा, तब देखोगे तुम, ऐसे बोलते. शरीर सर को काट के वहां पर लटकाने के बाद क्या देखेगा वो. लेकिन वो बच्चा उसके साथ अपने आप को पहचानता है, वो उसके कारण वो क्या भयभीत हो जाता है बच्चा. तो ये गलत मात्र, इसको मात्रा स्पर्शास्त्र कहते हैं, ये गलत पहचान के कारण. भौतिक अस्तित्व के जो द्वंद है उसका अनुभव होते हैं. इसलिए जब हम लोग आत्म साक्षात्कार बन जाते हैं, बाद में भगवान वर्णन करेंगे उसको. दुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतरागवय क्रोध, स्थितधर्मो निरुच्यते. लेकिन फिर भी ये वास्तविक है, ये अनुभव क्या है, वास्तविक है. ऐसा नहीं कि वो मिथ्या है, अनुभव तो होता है ना. वास्तविक वो है, भौतिक जगत मतलब द्वंद्व है. जो मायावादी लोग बोलते हैं ये सब मिथ्या है बोलते, लेकिन उनको सब थोड़ा दांत में दर्द आ गया तो वो डॉक्टर के पास भागते जाएंगे, है ना. वो मिथ्या है तो क्यों भाग रहे हो डॉक्टर के पास, है ना. तो उसका अस्तित्व रहता है. भक्ति में उनको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग भी ऐसे ही बोलेंगे मिथ्या है, उसको छोड़ देंगे. तो प्रभुपाद कहते हैं इसके ऊपर एक प्रवचन में बोल रहे थे, जितना हो सके उनको हम सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे, वो नहीं सुलझेंगे तो हम लोग ऐसे ही अपने भक्ति कार्यों में आगे बढ़ेंगे, है ना. ललित कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे. यू आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल. Yeah, I didn't want to reveal that, but you are very intelligent. You understood that actually. तो हम लोग उसको सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं नहीं वो होते हैं तो हम लोग अपना कर्तव्य को निभाते जाएंगे। यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं, उसको सहन करो और अपने कर्तव्य निभाओ। अर्जुन को वही बता रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि उसको नहीं सुलझाएंगे। नहीं सुलझाना मतलब क्या है, वो मायावाद है। और दूसरा, उसका अगर उसमें ही अटके जाना, अटके रहना और कर्तव्य को भूल जाना, आध्यात्मिक प्रगति या कृष्ण भक्ति को, सेवा को भूल जाना, क्या है वो साधना, सेवा को भूल जाना क्या, वो भौतिकवाद है। वो लोग भौतिकवादी लोग ऐसे समस्या और उसके सुलझाने में डूबे हुए हैं। दे आर एंटैंगल्ड इन द साइकिल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। सो ये समस्या और उसके उपाय में वो लोग डूब गए, और समस्या वो जो उपाय जो है, हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे ना, वो आठवें श्लोक के था ना ऊपर, वो समस्या है। और ये जो उपाय जो बनाते हैं भौतिकवादी लोग, वो उपाय क्या है, और कई सारे समस्याओं का स्रोत बन जाता है, और उसको सुलझाने के लिए कुछ और उपाय बनाते हैं, और वो ऐसे वो अटक के वहीं पर डूबे रहते हैं। उनके जीवन में कोई धर्म का पालन करना या आध्यात्मिक जीवन या भक्ति सेवा, उनको उनके जीवन में कुछ नहीं रहता। और मायावादी लोग बाहरी दृष्टि से वो आध्यात्मिक जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन वो लोग मिथ्या करके उसको भूल जाते हैं। तो भक्त लोग क्या सोचते हैं, भगवान मुझे सुदृढ़ बनाने के लिए, भक्ति में सुदृढ़ बनाने के लिए ये सभी चीज भेज रहे हैं, ऐसे सोचते, या हमें साक्षात्कार दिलाने के लिए, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है करके साक्षात्कार दिलाने के लिए हमें भगवान ये सभी भेज रहे हैं, ऐसे सोचकर वो आगे बढ़ते हैं। तत्तेनुकंपा सुषमिक्षमाण गुंजान ये वात्मकृतं विकापाकम् तद्भाव पूर्वे विददान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय पाक। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बोल रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि जब भी उसके जीवन में दुख आते हैं, वो सोचता है ये सभी दुख मेरे मुझे पूर्व किए हुए कर्म के कारण है। वो कर्मी लोग भी जानते हैं, कर्म मीमांसक, जो कर्मवाद को स्वीकार, कर्म का जो नियम को, लेकिन यहाँ पर भक्त ये और भी सोचता है, वो सोचता है ये भगवान के अनुकंपा है, भगवान वैसे तो इसको नष्ट कर सकते हैं और इसको कम करके ही मुझे दे रहे, थोड़ा साक्षात्कार कराने के लिए कि ये भौतिक जगत सही जगह नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, या भगवान के नाम का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति पदे सदाय वाक्य। ठीक है, तो ऐसे भक्त को समझना चाहिए, भक्तों को क्लाइमेटिक कंडीशंस को सहन करना चाहिए, शीत उष्ण, शीत आ गया हीटर लगा दिया, उष्ण आ गया फैन लगा दिया, उसको सहन करने के लिए सीखना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा हम लोग उसमें उलझन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम भौतिकवादी की तरह उसमें डूब जाएंगे। तो और जो भौतिकवादी लोग है या असुर लोगों को सहन करना पड़ेगा भक्तों को, कभी कभी अन्य भक्तों को सहन करना पड़ेगा भक्तों को है ना, सभी लोग एक ही नहीं रहेंगे, अलग अलग स्वभाव से आते हैं, होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसलिए सहन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ होता है। और इस श्लोक में अर्जुन को भगवान दो नामों से उच्चारण करना है, कौंतेय और भरत, भारत। तो कौंतेय अपने माता की ओर से वो नाम है, कुंती के पुत्र है, और भारत मतलब वो भरत वंशी है, भरत महाराज के वंश में आते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा ना, पिछले अध्याय में इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र को भी संजय भरत वंशी को करके संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों नामों को उच्चारण करते हुए, नामों से संबोधित करते हुए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसा आपका इतिहास है, ऐसे महान इतिहास, मतलब आपके परिवार का महान इतिहास है, आप अभी धर्म को नहीं पालन करेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए, उस इतिहास के लिए ठोस पहुंचेगा। जब भी ऐसे महान इतिहास होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे जिम्मेदारी आते हैं, ग्रेट हेरिटेज। तो भारत में जन्म लेने का अर्थ क्या होता है, तो एक आध्यात्मिक संस्कृति को हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे महान आध्यात्मिक संस्कृति इतिहास है, भारत का इतिहास है। सब लोग इसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि इसके बारे में किसको सिखाया नहीं जाता इतिहास में, कल्चरल फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बारे में दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास, भारत का इतिहास, तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे था वो अभी। तो जब भी हम लोग भारत में जन्म लेते हैं तो तुरंत वो कुछ जिम्मेदारी उसके साथ साथ आ जाता है। वो क्या जिम्मेदारी है, वो क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक खरी पर परोपकार। भारत में जन्म लेने का जिम्मेदारी उद्देश्य यही है, जिम्मेदारी वो उसका क्या जिम्मेदारी है, हमें कृष्ण भक्ति को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए और इसको दूसरों को भी बांटना चाहिए। तो ये भारत में जन्म लेने का जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, इसलिए आधुनिक भारतवासी सोचते हैं क्यों यहाँ पर जन्म लिया मैंने, अमेरिका में क्यों जन्म नहीं लिया, या अमेरिका जाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भारत के वासियों के लिए, उनके जीवन में वो सर्वोच्च लक्ष्य है। अमेरिका में क्या है, वो भी कुत्ते बिल्ली की जैसे ही है वो लोग, वो भी उनका भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो रहा है और कुछ नहीं, कुत्ता वो बेशरम से रास्ते के ऊपर मैथुन कर रहा है, ये लोग थोड़ा बहुत बड़े बड़े इमारत में मैथुन कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर, और कुछ नहीं हो। तो ये भारतवासियों का जिम्मेदार है, तो इसके लिए कृष्ण भावनामृत को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ये आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उसके लिए वे जो भी जरूरी प्रशिक्षण है वो स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से साक्षात्कार करके दूसरों को भी बांटना चाहिए। तो यही जिम्मेदारी है, नहीं तो हम लोग भी भारतीय कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं। अमेरिका में जो प्रॉपर बोलते हैं ना, अमेरिका के लोगों को वाइट एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स जानते हैं, आदिवासी, अमेरिका और यूरोप के लोग वो सफेद आदिवासी है, आप लोग क्या है, काले आदिवासी बन जाएंगे, बस वही अंतर है, बस काले और गोरे का अंतर है, बस इतना ही अंतर। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सांस्कृतिक होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ये जिम्मेदारी, ये अर्थ है इसका, कौंतेय और भरत शब्द का। तो अगला श्लोक लेंगे, मात्र यम ही नागत यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो पिछले श्लोक में ये सुख दुख द्वंद्वों के बारे में बोल रहे थे, ये सुख दुख के बारे में। इस श्लोक में उनको उनसे विचलित नहीं होते हैं और समभाव रहते हैं, वो उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील माना जाता है, ये भगवान बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन प्रगतिशील है? जितने हद तक हम लोग ये सुख दुख को, ये भौतिक जगत के जो द्वंद्वों को सहन कर रहे हैं, और वो अधिकार है, अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए वो अधिकार है। तो श्रील प्रभुपाद इसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे, संन्यास का उदाहरण। तो एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील होना चाहे, होने के लिए बहुत ही दृढ़ है, उसका उसको संन्यास लेना चाहिए। लेकिन संन्यास से लेना क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत सारे तपस्या को करना पड़ेगा, विशेष करके काम वासना को सहन करना पड़ेगा, वो आसान नहीं है। और प्रभुपाद इसको दूसरे शब्दों में वो कहते हैं, विशेष करके परिवार वालों के साथ जो संबंध है वो काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो क्या है, वो परिवार क्या है, ये काम वासना का ही विस्तार है बस। वो जानते हैं ना, प्रभुपाद एक बार मुंबई में थे, उनके एक हमारे आंदोलन के एक हित चिंतक के घर में बहुत बड़ा परिवार था। वो व्यक्ति परिवार के जो मुखिया था, वो एक एक करके अपने परिवार वालों को लेकर आके उनको क्या बोल रहा था, ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग देम, तो उनका परिचय दे रहा था। तो पहले वो अपने पहले पुत्र का लेकर आए, और उसका पत्नी को लेकर, उनके बच्चे को लेकर, फिर उसके दूसरे पुत्र पुत्र पच्ची, तो ऐसे कई सारे लोगों को लेकर आए, और एक एक करके वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करके वापस जा रहे थे। तब वो लोग नहीं थे उस तरफ, थे अपने कुछ कर रहे थे वो लोग, तब प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो उनके शब्दों में वो व्यक्ति कैसे बोल रहा था, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र है, मेरा 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 मेरा। प्रभुपाद जी क्या बोला, ये मेरा मैथुन जीवन है। उनके बारे में बोल रहे थे, दिस इज माई सेक्स लाइफ, ऐसे बोल रहे। तो अंत में परिवार क्या है, जस्ट एक्सपेंशन ऑफ सेक्स लाइफ, यही है परिवार। आपको काम वासना को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए ये परिवार का भोजन लिया आपने बस। तो और अंत में क्या हो जाता है, वो इतना लिप्त हो जाते हैं ऐसे, है ना, काम वासना में इतना लिप्त हो जाते हैं, जरूरी नहीं है आप काम कर रहे, जब बूढ़े हो जाते हैं जरूरी नहीं है आप खर में लिप्त है, लेकिन वो उसके विस्तार में तो लिप्त है ना, है ना। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हम लोगों को वो परिवार के साथ जो संबंध है उसको काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये प्रभुपाद यहाँ पर आरंभ में, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के उच्च अवस्था में प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुष्ट प्रहारों को समभाव से सह सकता है, तो वह निश्चित मुक्ति के योग्य है। लेकिन जो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो संन्यास लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्त लोगों में ऐसे होता है, संन्यास का जरूरत नहीं है, या वानप्रस्थ लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग परिवार में रह के सेवा कर भक्ति कर सकते हैं ऐसे। लेकिन आप देखिए, वो भागवत में वर्णन आता है, जब जो अम्बरीश महाराज, उनके ये भक्ति के बारे में वर्णन है, पूरा उन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा उन्होंने, अभी उसके बाद में थोड़ा चर्चा आएगा उनके बारे में। सबय मन कृष्ण पदारविंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कतो, ऐसे सभी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाए। तो सभी इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाए हैं, वो परिपूर्णता है, वो मन इंद्रिय और सब कुछ, हम आपके शरीर सब कुछ भगवान की सेवा, वो तो परिपूर्णता है वो, फिर क्यों वानप्रस्थ लिया उन्होंने। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी भी भक्त संतुष्ट नहीं रहता अपनी सेवा से, और करना चाहते हैं, और वृद्धि करना चाहते हैं ऊंचा, तो संन्यास आश्रम मतलब बहुत ही आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर ऐसे कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन के सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, जीवन की परिपूर्णता कब होती है, जब संन्यास लेते हैं। भक्ति के लिए भी वो अनुकूल है। वास्तव में परिपूर्णता क्या है, हमारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो परिपूर्णता है, लेकिन उसके लिए वो अनुकूल है वो वर्णाश्रम धर्म। उस उदाहरण से हम लोग लेंगे तो अम्बरीश महाराज का भक्ति सेवा को वृद्धि करने के लिए वर्णाश्रम धर्म क्या है, बहुत ही अनुकूल कारक है। इसीलिए क्या किया उन्होंने, वानप्रस्थ लिया उन्होंने अम्बरीश महाराज ने। तो इसलिए यहाँ पर सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है तो अंत में हमें सभी से, जो भक्त है या अभक्त है, उनसे भी हमें अनासक्त होना है, परिवार वालों में। कुंती महारानी बोलते हैं ना, पांडुषु वृष्णिषु स्नेहपाशम चिंदी, स्नेहपाश जो है पांडु और वृष्णि है, उनके साथ भी हमारे परिवार वाले वैष्णव हैं, हम उनका वैष्णव सेवा करते रहेंगे आजीवन करके, ऐसे भी कुछ बोलते हैं, है ना। तो पति पत्नी वगैरह ठीक है, वो वैष्णव है, भक्त है, वो भी बहुत सारा सेवा करते होंगे, कर रहे होंगे और बहुत सारा भक्ति कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनसे भी हमें स्नेह नहीं होना चाहिए। अंत में हम लोग उनको स्मरण करेंगे तो फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही जागरूक होना चाहिए हम लोग। तो ये परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमें सब सीखना चाहिए, लेकिन बहुत ही कठिन हो जाता है। जीवन आजीवन उनके साथ रहे, उनसे आपको बहुत सहायता मिलता है, सहायता लिया आपने। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, आपको विरक्ति दिला देंगे आजकल के बच्चे, हाँ आपको विरक्ति दिला देंगे आपको, क्योंकि सब ये मूर्ख लोग, भारत के लोग वो सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे क्या ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए, या अमेरिका जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए, लंदन में जाना चाहिए, और इनको मरने के बाद वो देखने के लिए भी नहीं आते, ऐसा स्थिति आज की। तो फिर भी लोग अनासक्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण का जरूरत, प्रशिक्षण जैसे हम पिछले श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे थे, प्रशिक्षण नहीं है। प्रभुपाद भी वो बोले, वो खर्दम मुनि जब वो वानप्रस्थ लिया उन्होंने, तो वो सोचते नहीं है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं सोचते, प्लान भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ लेना, घर जाके चले जाना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन आजकल फिर उसको बोलते हैं, आजकल आधुनिक जमाने में लोग क्या है, ऐसे शहरों में बड़े होकर, जन्म लेके बड़े होकर, वो लोग ये सब नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। ऐसे ही जन्म लिया और बड़े हो गए, कुछ प्रशिक्षण नहीं, ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण नहीं, कुछ नहीं, तो फिर कैसे वो अनासक्ति आएगा अंत में। तो वो प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है ब्रह्मचर्य का, तो वो कठिन हो जाता है। प्रभुपाद जी अपने जीवन में भी देखेंगे तो बार बार उनके स्वप्न में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते थे, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो करके, वो उठ के खड़े हो जाते थे, उठ के बैठते थे, और उनको बहुत ही वो जो आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, वो बहुत कठिन लगता था उनको, कैसे मैं अपने परिवार वालों को छोड़ू। बाद में जब संन्यास लिए प्रभुपाद और जब प्रचार किए पाश्चात्य देश में, बहुत सारे भक्त बन गए, प्रभुपाद वो कहते थे, वो मैंने 4-5 बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे 4-5 हज़ार बच्चे दिए, और मुझे वो असली बच्चों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कभी हम लोग वी विल नॉट बी लूजर्स, कभी हम लोग कुछ खोएंगे नहीं, हम लोग अंत में हमें बहुत लाभ ही होगा। लेकिन भौतिक आसक्ति के कारण ये कठिन हो जाता है, हमारे आसक्तियों को छोड़ त्याग देना, उन्होंने काटना। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर उतना कठिनाई भी है, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ है और परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब शांति, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, शांति है, कठिनाइयों में भी प्रयास करता है, वो दृढ़ता के कारण ही आता है, सहन करने के, टॉलरेंस, सहन करने से दृढ़ता आती है, दृढ़ता के कारण परसिवरेंस आता है। समझ में आ गए? तो और परसिवरेंस के कारण क्या हो जाता है, यहां पर जो व्यथा से हम लोग मुक्त होते हैं और सुख दुख में समभाव प्राप्त करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। सो धीरम, तो इसको भी धीर कहते हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा ना, अर्जुन भ्रमती बचे में मनहा, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यहाँ पर भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, धैर्य रखो, धैर्य रखो, सम सुख और दुख में, हाँ उनको समझा रहे हैं ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण भी देते हैं, उनका भी बहुत तरुण पत्नी थी और वृद्ध माता थी, फिर भी एक ऊंचे उद्देश्य के लिए उन्होंने त्याग दिया अपने परिवार को। तो त्यागने के बाद क्या किए, सो लेकिन वो अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे संन्यास आश्रम का। तो ये अधिकार है मुक्ति के लिए, हमें स्थिर रहना चाहिए, इक्विपॉइज्ड होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर ऊंचा उद्देश्य श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, और परसिवरेंस, हमें क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और उसके का साथ साथ हम जो दूसरा आश्रम जो स्वीकार करते हैं उसमें हमें स्थिर रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमें हमारे अंदर होना चाहिए, तो तभी हम लोग मुक्ति के लिए योग्य हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वो उसका यहाँ पर पुरुषर्षभ ऐसे कहते हैं, सभी पुरुषों में जो श्रेष्ठ है आप, ऐसे अर्जुन को प्रेरणा दे रहे भगवान। सो क्यों श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि वो भगवान के भक्त है, उनके अंदर ये सब गुण है। तो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहिए मनुष्य जीवन में, ये लक्ष्य होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म लिए और मर गए, तो वो नहीं होना चाहिए, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए। आजकल आधुनिक विज्ञान में आधुनिक जो दार्शनिक लोग वैज्ञानिक लोग है वो मृत्यु के बारे में, कैसे मृत्यु को जीता जाए उसके बारे में सोचते नहीं है, उसको आंख बंद कर दिया उन्होंने। उनका क्या दर्शन है, वो जब खतरा आ जाता है, जैसे वो खरगोश होता है ना, खतरा आ जाता है तो आंख बंद कर देता है, या ऑस्ट्रिच वो अपने सर को वो मिट्टी में अंदर डाल देता है, खतरा आ गया तो, ऐसा इनका दर्शन है। तो वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, अमृतत्व को प्राप्त करना, ठीक है। तो अगला श्लोक लेंगे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पर भगवान शरीर को असत कहते हैं और आत्मा को सत कहते हैं, और बाद में सत और असत का परिभाषा भी देते हैं। तो ना सतो विद्यते भावो, जो ना सतो मतलब जो सत नहीं है उसका भाव मतलब देर इज नो एंड्योरेंस, उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है। तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, उसका अर्थ भाव शब्द का अर्थ। ना भावो विद्यते सतः, जो सत है उसका भाव नहीं, भाव नहीं है, भाव है, अभाव है। नहीं, ना भाव मतलब भाव नहीं है, भाव मतलब चिरस, ना भावो विद्यते या अभाव नहीं है, परिवर्तनशील गुण नहीं होता है। ओके, कंफ्यूजन। तो और दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी यहाँ पर भगवान सत्य और असत्य का क्या परिभाषा है उसके बारे में बताते हैं। सत्य क्या होता है, कभी बदलता नहीं है, लेकिन असत्य क्या होता है, वो बदलता है, उसका परिभाषा दे रहे हैं। आजकल आधुनिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं ना, सभी जो उनका जो मत है, धारणाएं हैं, सब बदलते रहते हैं हमेशा, सभी का अलग अलग मत होता है। तो उसका अर्थ है सत्य नहीं है वहां पर। आप लोगों ने अभी जो आप स्कूल में थे जो पढ़ा, अभी वो आप जाके देखेंगे तो वो कुछ नहीं रहता है वहां पर, क्योंकि अलग, लेकिन भगवद्गीता में जो वर्णन किया गया है वो सब हमेशा रहता है ना। ये सत्य और असत्य का परिभाषा है। और मायावादी लोग भी सत और असत के बारे में बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वो कहते हैं। उनके अनुसार असत शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पर हमारे वैष्णव दर्शन के अनुसार या भगवद्गीता के अनुसार या भगवान के अनुसार असत शब्द का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है, उसका अस्तित्व रहता है लेकिन वो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी रियालिटी बोलते हैं उसको, वो परिभाषा। ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, ये शरीर मिथ्या नहीं है, उसका अस्तित्व है लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वो मिथ्या है तो फिर क्या है, वो डॉक्टर्स क्या, ये शरीर के लिए कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास क्यों जाता है, या इस जगत को मिथ्या है करके त्याग करके फिर से ऐसे अस्पताल खोलना या विश्वविद्यालय खोलना या पॉलिटिक्स में भाग लेना, उसमें क्यों मिथ्या कार्यों में क्यों लग जाते हैं मायावादी लोग, है कि नहीं। तो उसका अस्तित्व है लेकिन वो शाश्वत नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है, असत, वो असत शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों का परिभाषा देते हैं। और यहां पर तो प्रभुपाद कहते हैं दोनों ये स्वीकार करते हैं, तत्वदर्शी मतलब जो निराकारवादी है या सगुणवादी है या निर्गुणवादी, निर्विशेषवादी या सगुणवादी, दोनों ये लोग इसको स्वीकार करते हैं कि आत्मा का चिर, शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये दोनों स्वीकार करते हैं। इसलिए तो और प्रभुपाद भगवद्गीता के जब वो भगवद्गीता के उद्देश्य वर्णन कर रहे थे ना भूमिका में, हम लोग पढ़ा था उन्होंने, वी आर ऑल इन द एटमोस्फियर ऑफ, वी आर इन द एटमोस्फियर ऑफ असत नॉन एग्जिस्टेंस, हम लोग सत्य है लेकिन अभी असत के वातावरण में हम लोग है, इसके कारण हमारे बहुत सारे वही दुखों का कारण है, हमारे असली जो स्वभाव और अभी के अस्तित्व में बीच में क्या है, बहुत अंतर है,
इसके कारण यहाँ पर दुखी रहते हैं हम लोग भौतिक जगत में, या वो चिंताओं का कारण बन जाता है। क्यों हमें बहुत चिंताएं हैं? ये शरीर के कारण ही है ना। एक बार सुबह प्रसाद डाल दिया, फिर ऐसा नहीं कि आजीवन और प्रसाद डालने का जरूरत नहीं है, शरीर में अन्न डालने का जरूरत नहीं, नहीं, फिर उसको अन्न देना पड़ता है, फिर चिंता उसके लिए कारण जागृत हो जाता है, कहाँ से अन्न आएगा। ये असत शरीर के कारण बहुत सारे चिंताएं जागृत हो जाते हैं, सभी चिंताएं और दुख का कारण यही है ये शरीर। तो प्रहलाद महाराज भी अपने पुत्र अपने पिता हिरण्यकश्यप को बोल रहे थे, हिरण्यकश्यप को पूरा दुनिया का ऐश्वर्य और नियंत्रण उसके हाथ में था, फिर भी इतना वो चिंतित था। तब उनको बोलते तत्साधमण्य सुरवर्य देहिना सदा संविघ्न दिया मसद्ग्रहात हित्वात्मपातं ग्रहमंदकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। वो कहते हैं तत्साधमण्य, मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसको मानता हूँ, क्या मैं क्या मेरे अनुसार क्या है, मन ने मतलब मेरे अनुसार, आई कंसीडर मैंने मेरे अनुसार क्या है। सो हे असुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ, ऐसे उनको वो संबोधित करते हैं। तत्साध मन ने सूर्यवर्य देहिनाम देहिनाम सभी जीवों के सदा समुद्विग्न दिया मसद्ग्रहात, सदा समुद्विग्न दियाम हमेशा उद्विग्न है, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड या चिंताग्रस्त है, बहुत दुखी है, किसके लिए? असत ग्रहात, ये असत को उन्होंने स्वीकार किया है। इसका अर्थ होता है शरीर को, असत शरीर को उन्होंने स्वीकार किया है या असत ग्रह को स्वीकार किया है। हाउस होल्डर लाइफ इज टेम्पररी, इट इज आजीवन आप लोग नहीं रह सकते हैं। वो कभी ऐसे फेरी टेल्स बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में, लिव फॉर एवर ऐसे है ना, कुछ ऐसे सिखाया जाता है ना। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और बोलो बोलो उसको क्या है, अभी स्कूल से बाहर है ना, कुछ बताओ। तो लाइक अ डायमंड, ऐसे कुछ फेरी टेल, आजीवन तुम जीवन बिता सकते हो, रह सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे ही उनको ट्रेनिंग देके वो लोग क्या करते हैं, उनको जो लोगों का शोषण करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है, एक शोषण करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। ऐसे उनको आरंभ से प्रशिक्षण देते हैं, यहाँ पर तुम भौतिक जगत में सुखी हो सकते हो, भौतिक जगत में हमेशा के लिए आनंदमय जीवन बिता सकते हो, ऐसे उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। और बाहर आके विश्वविद्यालय के बाहर आके क्या करते हैं, वही सोच में वो लोग भागदौड़ करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं। उसके लिए किसके लिए फायदा होता है? बैंक और ये कारकानों के लिए फायदा होता है। शिक्षा प्रणाली ये लेबर क्लास बनाने के लिए, बैंक और कारकान को लेबर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली है ये। तो ऐसे लेकिन हमें जानना चाहिए, दिस इज टेम्पररी वर्ल्ड फुल ऑफ मिजरीज, ये अस्थाई जगत है ये, और बहुत सारे कष्टों से है। पारिवारिक जीवन भी ऐसे है, लोग ऐसे भ्रम में है कि हमें यहाँ पर सुख प्राप्त होता है करके, लेकिन कोई सुखी नहीं है। वो पिताजी कहते हैं मैं सुखी प्राप्त नहीं किया, तुम तो सुख प्राप्त करो, या तुम्हारे द्वारा मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मैं उसको चबाते 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 जीवन भर चबा चबा के छोड़ा, तुम अभी उसको कोशिश करो। पुनश्चर्वित चर्वनाना मतीर्ण कृष्णे परतो सुतो वा मितो विपत्ते ग्रह व्रतानाम, ग्रह में व्रत लिया उन्होंने, ग्रह में रहने का आदान तक हो गया। ऐसे इंद्रियों के दास जो है, विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना, बार 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 उसको चबाते चबते रहते चबते रहते, मैं चबके 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 कभी सुखी नहीं हुआ, फिर भी तुम छोड़ो नहीं, तुम भी प्रयास करो करके ऐसे उसको प्रेरणा देता रहता है वो पिताजी। तो ये मैथुन जीवन या पारिवारिक जीवन है या भौतिक जगत का सुख जो है, जिसके कारण ये लोग गोदास बन जाते हैं, आदांत गोद विशतांत मिश्रम नरक की ओर जाते हैं इंद्र तुप्ति करके। और ये ऐसे आदांत को कभी कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकते, अपने प्रयास से या दूसरों के सहायता से, परतो स्वतो वा कभी कृष्ण मती नहीं बन सकते वाले। तो ये सब किसके लिए, ये सभी दुख और चिंता किसके लिए? क्योंकि ये असत ग्रह, असत ग्रह सदा समुद्विग्न दियाम असत ग्रहात, ये टेम्पररी असत शरीर को हम लोग स्वीकार किया है और असत परिवार को स्वीकार किया है और असत जगत को हम लोगों ने यहाँ पर आ गया है। ये सब असत है, सब कुछ शरीर परिवार और जो भौतिक जगत। शरीर को त्यागना पड़ेगा, परिवार को त्यागना पड़ेगा, अंत में प्रलय के समय में ये जगत को भी त्याग के पानी में डूब के रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब असत है। तो आत्मा कभी यहां पर सुखी नहीं हो सकता है, ये चिंता का कारण है, बहुत सारे दुखों का कारण है ये। सो ऑल अवर प्रॉब्लम्स, प्रभुपाद बोलते हैं ये सभी समस्याएं क्यों हैं, ये जो सत है आत्मा है वो असत वातावरण में है, यही चिंता का या सभी समस्याओं का। भगवद्गीता का उद्देश्य है हमें इस असत वातावरण से मुक्त करने का, भगवद्गीता का उद्देश्य है। सो इसलिए भगवान यहाँ पर नाश तो विंदते भाव, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तब हम लोग जैसे इस भौतिक जगत के सुख दुखों को सहन करेंगे और अपने कर्तव्य करेंगे, या सुख दुख आ जाते हैं तो समभाव रहेगा, हम लोग शोक नहीं करेंगे उस समय पर, तब हम लोग अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। इसलिए ये सभी दोनों का ये स्वभाव को बता रहे हैं। कितना दार्शनिक बात है ना, ये सभी गहरा विषय है ना, है कि नहीं? क्यों ये सब सत और असत का क्या स्वभाव, क्यों ये वर्णन कर रहे हैं, ये समझना चाहिए हम लोगों को। ऐसे फेरी टेल में क्या है, फैंटेसी में नहीं रहना चाहिए। फैंटेसी, ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम लैंड, अलाइस इन वंडरलैंड, सब ड्रीम लैंड, सब लोग ऐसे ही ड्रीम लैंड में है, यही सिखाया जाता है शिक्षा में। शिक्षा प्रणाली मतलब यही चीज है, कैसे ड्रीम लैंड में रहो, सब स्वप्न में है, सभी लोग स्वप्न में। प्रभुपाद कहा करते थे रात का स्वप्न होता है या दिन का स्वप्न होता है, सभी स्वप्न ही है। दिन में लंबा एक जीवन का स्वप्न होता है, रात को कुछ घंटे का कुछ क्षण का स्वप्न होता है। ये मृत्यु होने के बाद क्या है, ये हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा स्थिति, सगे संबंधी, तुरंत ही अलग पहचान। हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं ना, स्वप्न में क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम राजा रानी बन जाते हैं, रानी के पीछे घूमते रहते हैं। और मृत्यु होने के बाद भी ऐसे ही होता है, हम लोग भूल जाते हैं कौन राजा था कौन रानी था पिछले जीवन में, एक नया शुरू हो जाता है। सब यह स्वप्न है, वास्तविकता नहीं है, या ये टेम्पररी असत है। सो उभयोरपि दृष्टुंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तो यहां पर इसलिए कहा गया है, ये विष्णु पुराण से क्यों धाम के बारे में वर्णन आता है, कहा गया है कि विष्णु तथा उनके द्वाम स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है, सत तथा असत वो भी है ना, असतो मा ज्योतिर, सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय या मृत्युर्मा अमृतम, तो ऐसे वर्णन आता है। तो वो सिर्फ ज्योति स्वयं प्रकाशमान क्या है, वो विष्णु का धाम है। वो ज्योतिर्गमय मतलब क्या है, विष्णु के धाम जाना चाहिए, वही वो असतो मा, वो तीनों वो विष्णु के धाम में होता है बस।
मृत्युर्मा अमृतम, तो क्योंकि पिछले श्लोक में अमृतत्व के बारे में वर्णन, वो कहाँ पर होता है? ये विष्णु के धाम में होता है। विष्णु पुराण में ऐसे वर्णन का है, ज्योतिषाम ज्योतिषिम विष्णुर भवनानि विष्णु हो।
तो तत्वदर्शी का अर्थ कौन है? हालांकि मायावादी लोग भी इसको स्वीकार करते हैं कि शरीर असत है और आत्मा सत है, लेकिन अंत में तत्वदर्शी मतलब कौन होते हैं? जो यहाँ पर ये भारतीय दर्शन का वर्णन आता है उसमें दो विभाजन किया गया, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। सो नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे बौद्ध जैन या चार्वाक वगैरह, वो वेदों को स्वीकार नहीं करते। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन आता है ना चैतन्य चरितामृत में, वेद न मानिया बौद्ध हो लो नास्तिक, वेदों को नहीं मानते इसलिए उनको नास्तिक है। नास्तिक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो अंत में नास्तिक कौन होते हैं? जो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वेदों को स्वीकार करना मतलब भगवान कृष्ण को स्वीकार करने का। तो अंतिम परिभाषा है, सर्वोच्च परिभाषा है नास्तिकवाद का, मतलब जो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते वो भी नास्तिकवाद है, जो पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं करते वो भी नास्तिक है, कर्म के जो सिद्धांत में जो वो स्वीकार करते हैं नहीं है वो भी नास्तिक है, ये सब नास्तिक है। वेदों के प्रमाण को नहीं जानते स्वीकार करते है, ये आस्तिक है। और आस्तिक दर्शन में छह दर्शन होते हैं, न्याय मतलब तर्क वितर्क करना, तो ये गौतम मुनि ने इसको प्रचार किया, तर्क वितर्क करना। तो और वैशेषिका मतलब जो खानदा ने प्रचार किया, तो वैशेषिका इसको एटॉमिक थ्योरी बोलते। तो इसका अर्थ क्या है? ये अलग अलग जो रूप है भौतिक जगत में, अंत में वो अणुओं में बदल जाते हैं, अंत में अणुओं के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको वैशेषिका कहते हैं। तो और सांख्य कपिल ने, नास्तिक कपिल ने प्रचार किया इसको। सांख्य मतलब ये भौतिक तत्वों को अध्ययन करते हैं, भौतिक जगत को 24 तत्वों में विभाजित करके उसको अध्ययन करते हैं। और योग पतंजलि ने उसको सिखाया, शरीर और मन को कैसे आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करना है नियमित करके, उसको पतंजलि योग कहते हैं। सुबह यहाँ पर भक्त लोग भी योगा का अभ्यास कर रहे हैं, वो हम लोग स्वास्थ्य के लिए भक्ति करने के लिए करते हैं, वो पतंजलि का योग नहीं है। हम पतंजलि का योग में कुछ ज़्यादा, सिर्फ आधा घंटा 25 मिनट, 10-15, 20-25 मिनट करना चाहिए बस, सिर्फ हमारे शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, ताकि हम लोग अच्छी तरह से भक्ति करना है, ठीक है। योग और उसके बाद में कर्म मीमांस मतलब कर्म कांड को जो पालन करते हैं उनको कर्म मीमांस, कर्म कांड को पालन करके ऊंचे भौतिक भोग को प्राप्त करना, उसको कर्म मीमांस। और अंत में वेदांत मतलब जो वेदों के ज्ञान है, ये भगवान का भगवत विज्ञान है वेदांत मतलब, जो सर्वोच्च वेदों का ज्ञान है ये। तो योग को पतंजलि ने सिखाया, कर्म मीमांस को जैमिनी ने सिखाया, जैमिनी भी वेद व्यास के शिष्य थे, और वेदांत को वेद व्यास ने सिखाया, उन्होंने लिखा उसको, वो वेदांत में ये सब अन्य को खंडन किया हुआ। या शिष्य थे लेकिन फिर भी क्या है, वो उनको हम लोग स्वीकार नहीं इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उसको। और वेदांत में भी दो विभाग है, एक निर्विशेषवादी होते हैं और दूसरा सगुणवादी होते हैं, सविशेषवादी या सगुणवादी होते हैं, जो भगवान को निर्विशेष करके प्रचार करते हैं, वो मायावादी शंकराचार्य वगैरह, है ना, शंकराचार्य ने उसको प्रचार किया।
और सविशेषवादियों में उसको हम लोग बाद में लेंगे। ये जो पांच और ये छह
जो मायावादी है, पांच
जो वेदों के दर्शन है,
षट दर्शन कहते हैं उनको,
ये सभी छह दर्शनों को वेदांत में जो मायावादी, ये जो छह वर्ग है
वो लोग क्या है,
इनको षट दर्शन कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा और वेदांत, इनको षट दर्शन कहते हैं। तो वो षट दर्शन में ये भाग
जो सगुणवादी है
उनको छोड़कर, ये निर्विशेषवादी है वो और अन्य जो पांच षट दर्शन है,
पांच दर्शन जो है,
तो वो अंततः क्या है, वेदों के विरुद्ध है।
क्योंकि उन्होंने, हालांकि वेदों के द्वारा उनका उनकी शिक्षाओं को उन्होंने डिराइव्ड
मतलब उसको उन्होंने निकाला, लेकिन अंत में हम लोग वेदों का सार देखेंगे या वेदांत को देखेंगे, सर्वोच्च वेद को देखेंगे, वेदों के ज्ञान है उसको देखेंगे तो
उसके तद विरुद्ध है, इसलिए उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। अंत में वे वेदों के एंटी वेदिक, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। क्योंकि वो लोगों ने क्या किया, वेदों से कुछ लिया, लेकर उसको अपने मनगणित ढंग से तर्क वितर्क करके प्रचार किया। दे आर ऑल स्पेकुलेशंस बॉर्न फ्रॉम द वेदास, या वेदों के जो बाहरी जो है ना सरफेस, बाहरी सतह से जो उत्पन्न हुई है,
वो आस्तिक कहा गया क्योंकि वेदों को मानते हैं,
लेकिन फिर भी अंत में वो एंटी वेदिक और नास्तिक, हमारे गौड़ी आचार्य विशेष करके उनको नास्तिक कह दिया,
क्योंकि अंत में वो वेदों का जो विरुद्ध है। क्यों वेदों के विरुद्ध है, कि अंत में वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण है।
वेदश्च सर्वेर अमर वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवचा, तो क्योंकि ये सब लोग भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए अंततः वे वेदों के विरुद्ध है। सार रूप में देखेंगे तो मायावादी लोग भी भगवान को, भगवान कृष्ण को निर्विशेष करके प्रचार करते हैं, इसलिए वो क्या है, एंटी वेदिक अंततः। सो जब प्रभुपाद जी पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखे, जो एक अधिकृत भक्त जो परंपरा में आते हुए अधिकृत भक्त के मार्गदर्शन में गीता हम लोग अध्ययन करेंगे, तो तुरंत क्या हो जाता है, हम लोग सभी वैदिक ज्ञान के ऊपर चले जाते हैं।
उसका अर्थ है इन सभी जो दर्शन हैं उसके आगे हम लोग चले जाते हैं।
सिर्फ भगवद्गीता, हम लोग बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवद्गीता काफी है।
ठीक है, तो और सगुणवादियों में शुद्ध अद्वैतवाद
जो विष्णु स्वामी ने प्रचार किया, ये चार वैष्णव संप्रदायों ने प्रचार किया ये चार दर्शनों को।
जो विष्णु स्वामी संप्रदाय, जो रुद्र संप्रदाय है, उसने, उन्होंने ये शुद्ध अद्वैतवाद को प्रचार किया।
शुद्ध अद्वैतवाद का क्या अर्थ होता है, जब हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है तो हम भगवान से एक हो जाते हैं, उसका अर्थ क्या है, मायावाद नहीं, चेतना में शुद्ध हो जाते हैं हम लोग, चेतना में ये भगवान में एक हो जाते हैं। जैसे भगवद्गीता के आरंभ में अर्जुन का इच्छा अलग था और भगवान का इच्छा अलग था, भगवद्गीता सुनने के बाद क्या हो गया, करिष्ये वचनम तवा, आप जैसे कह रहे वैसे, वहां पर क्या हो गया, भगवान का इच्छा और अर्जुन का इच्छा एक हो गया ना, है कि नहीं, उसको शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। शुद्ध अवस्था में, चेतना में भगवान और आत्मा में एक एकता रहता है, उसको शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं।
और दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद,
विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब वननेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं ना, तो सभी भगवान है लेकिन भगवान के कई सारे शक्तियां हैं उसको कहते हैं। ये रामानुज आचार्य, श्री संप्रदाय के जो आचार्य हुए वो रामानुज आचार्य ने इसको प्रचार किया।
और उसके बाद में जो द्वैत द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद,
भगवान और जीव हमेशा अलग है, दो है वो,
एक नहीं है वो। आप देखा ना ऐसे, मध्वाचार्य के चित्र को देखा ना आपने, ऐसे वो कहते, ऐसे अब उनका चित्र होता है, वो हाथ ऐसे कहते करते हैं, द्वैत द्वैत सबको ऐसे बता रहे हैं। नो शुड बी ओपन विशिष्टाद्वैतवाद, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भगवान एक है लेकिन उनके कई सारे शक्तियां होते हैं, उनके उनमें विविधताएं होती है, उसका अर्थ है भगवान में विविधताएं होती है। अंत में भगवान ही है, अन्य कुछ नहीं है, लेकिन उनमें कई सारे विविधता है। भौतिक जगत भी भगवान के अंदर ही है ना, भगवान के परे है क्या कुछ नहीं, उसका विशिष्ट अद्वैत है। द्वैताद्वैतवाद मतलब भगवान और जीव अलग है, और भौतिक जगत और भगवान अलग है, और जीव और भौतिक जगत अलग है, और जीव जीव अलग है, एक एक जीव भी अलग जीव है हम लोग। या सो पांच तरह के, पांच प्रकार के विभिन्नताएं। तो ये मध्वाचार्य ने, जो मध्य ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने इसको सिखाया। और द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत मतलब एक भी है भिन्न भी है, वो द्वैताद्वैत वाद एक्चुअली वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व से वो निकलता है वो, क्योंकि वो जो निम्बार्क आचार्य ने इसको सिखाया, लेकिन निम्बार्क आचार्य अभी नहीं रहे, वो बहुत समय पहले आए थे, वो कलयुग के आरंभ में उनका संप्रदाय पूरा नष्ट हो गया था ऑलमोस्ट। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद केशव कश्मीरी को दीक्षा दिया, उनको प्रचार किया ना चैतन्य महाप्रभु। केशव कश्मीरी क्या थे, सिर्फ विद्वान थे, एक प्रकांड पंडित थे, वो जाकर फिर इस संप्रदाय को पुनर्जीवित करते हैं। इसके कारण उसका फिलॉसफी और अचिंत्य भेदाभेद में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, द्वैताद्वैत एक ही समय पर द्वैत भी है और अद्वैत भी है, वही अचिंत्य भेदाभेद एक भी है भिन्न भी है। तो इन सभी का सार, ये चारों वैष्णव संप्रदाय के धर्म, ये चारों वैष्णव संप्रदाय का सार क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। एक दृष्टिकोण से ये चारों भी, उनमें कुछ सत्य है, वो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्म संहिता के अपने तात्पर्य में वर्णन करते, 62वें श्लोक के तात्पर्य में ब्रह्म संहिता में वो वर्णन करते, ये चारों भी क्या है, स्पेकुलेशन है ना। हम लोग सिर्फ द्वैत अलग नहीं है भगवान से, हम भगवान से एक भी है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये सब क्या है, अंत में वाद है, और सिर्फ अचिंत्य भेदाभेद क्या है, वो तत्व है, वो सत्य है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। ना हम लोग क्यों ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ये 16वें अध्याय में ये श्लोक, ये शब्द आता है ना तत्वदर्शी भी ही, तो ये सभी लोग तत्वदर्शी है, मायावादी भी तत्वदर्शी, वो भी इस तत्व को समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है और जीव शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन अंततः कौन तत्वदर्शी है, अंततः तत्वदर्शी जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को अनुगमन करते हैं वही सही में, क्योंकि आत्मा और भगवान में जो संबंध है वही सही में जानते हैं। आत्मा का स्थिति सिर्फ ये नहीं कि जानना कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा शाश्वत है और शरीर अस्थाई है, यही काफी नहीं परिपूर्णता, लेकिन आत्मा क्या है, वो उसका क्या भगवान के साथ संबंध है, वो जानना परिपूर्ण है। एक ही साथ में कैसे आत्मा एक भी है भिन्न भी है, वही भगवद गीता में वर्णन आता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानिन्द्रियाणी प्रकृतिष्ठानी कर्षति। भगवान कहते हैं मेरे अंश है, मेरे अंश का अर्थ क्या है, वेद वेद है, वो अंश है, भगवान पूर्ण है, और क्योंकि भगवान के अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टिकोण से वो एक ही है। हम लोगों ने उस दिन चर्चा कर रहे थे ना भूमिका में, सोना क्या है, तो सोना और सोने का खान जो है वो एक ही है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से अलग है, भिन्न है। जैसे समंदर के पानी और समंदर का एक बूंद, दोनों एक ही है, दोनों क्या है, सॉल्टी है पानी, लेकिन फिर भी बूंद कहाँ वो सागर कहाँ। वैसे ही जीवात्मा एक ही साथ में भिन्न भी है और अभिन्न भी है, अचिन्ह, जिसको अचिन्ह भेदा भेद तत्व कहते, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, यही भगवद्गीता में भगवान सिखा रहे। इसलिए ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातना, इसलिए यहाँ पर वो तत्वदर्शी कह रहे, जो अचिंत्य वेदावेद को अनुगमन करते हैं, अंततः वो लोग तत्वदर्शी। तो श्रील प्रभुपाद ये सभी दर्शनों का नाम वगैरह नहीं लिया, उनका दर्शन का क्या दर्शन है वो सब नहीं सिखाया, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर अचिंत्य वेदावेद तत्व को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, इसलिए हम लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गए क्या संबंध है इसके साथ, पढ़िए उसको तात्पर्य को।
परिवर्तनशील शरीर का कोई स्वाभाविक नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है।
तो आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करते हैं कि ये शरीर बदलता है। वो लोग बोलते हैं 7 दिन में वो ये कोशिका है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ऐसे देखेंगे तो 7 वर्ष में अभी एक भी हमारे जो अभी इस शरीर में एक भी जो कोशिका है वो एक भी नहीं रहता, पूरी तरह से शरीर बदल जाता है। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने आई बॉडी चेंजेस बस आई रिमेन्स द सेम हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर अच्छी तरह से उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिए वहाँ पर क्या अचिंत्य भेदाभेद का वर्णन हो रहा है क्या, देखिए वो या हमने बता दिया आप स्वीकार कर लिया।
इनसे भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शास्त्र संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों का
सो आराधक और आराध्य के बीच में शाश्वत संबंध, तो ये शाश्वत है संबंध भगवान का।
श्री भगवान के अर्थ को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा।
तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है भगवद गीता का उद्देश्य, हमें इस असत्य से उद्धार करने के लिए, हम लोगों ने उसका पहले भी चर्चा की। तो यहीं पर उत्तर है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी वैशेषिक के बारे में न्याय क्या है, तो न्याय रूल्स ऑफ डिबेट और डिस्कशन उसको निश्चित करता है, और क्या क्या विषय को चर्चा करना चाहिए उसको विशेष निश्चित करता है।